लेकिन इसके लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। किंतु कोई व्यक्ति अपने कर्म के फल का त्याग नहीं कर सकता। सोचिए जो व्यापारी है ना, जब तक उसे ज्ञान ना हो, पुनर्जन्म का ज्ञान ना हो, कर्म का बंधन उसे पता नहीं है, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि वो व्यापारी है और वो जो है अपनी आमदनी 50% आमदनी वो मंदिर की सेवा में लगा दे, कैसे संभव है? शास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति को 50% अपनी आमदनी भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार में लगानी चाहिए। कैसे लगा सकते हैं? तो फल को ना भोगे। जब तक कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है, तब तक उसके अंदर अच्छे गुण नहीं हो सकते कभी। कई लोगों का बड़ा विरोधी तर्क होता है कि ये कौन सी बात हुई कि गीता में कहा गया है कि कर्मण्य वाले कारण से मां फले सुखदासन है, कि तेरा कर्म करने में अधिकार है और फल भोगने में नहीं है, हम फल क्यों ना भोगे? जब हम कर्म करेंगे तो हम फल क्यों ना भोगे? क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि वे नहीं समझ रहे अगला जन्म है। चूंकि अगले जन्म को नहीं समझते हैं, इसमें वो इस जीवन में ऐसे कर्म नहीं करना चाहते जिसमें उन्हें कुछ फल ना मिले। तो कहते हमने अपना जीवन क्यों बर्बाद करें, ऐसे काम में अपना जीवन क्यों बर्बाद करें जिसका फल हमें नहीं प्राप्त होने वाला इस जीवन में, है ना? तो इसलिए अगले जीवन को मानना बहुत जरूरी है, कर्म बंधन को मानना बहुत जरूरी है। तो कोई व्यक्ति ऐसे फल का त्याग नहीं कर सकता। इसी दूसरे अध्याय में भगवान कितने श्लोकों में केवल ही विषय पर बोलते जाते हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होता, उसको दूसरा शरीर प्राप्त होता है। कितने श्लोकों में भगवान ने यह बात समझाई। इसके बिना आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। और कोई प्रश्न?
प्रकृति अव्यक्त होने के बाद किसमें?
इनका प्रश्न जी, प्रकृति अव्यक्त होने के बाद किसमें मिल जाती है? प्रकृति भगवान के शरीर में जाती है। जो कारण दर्शाए विष्णु लेटे हुए कारण समुद्र में, तो उनकी दृष्टि से ही प्रकृति को गर्भाधान होता है। जितने जीव हैं वो सब पैदा होते हैं प्रकृति के द्वारा, है ना? और भगवान के द्वारा ही उस अव्यक्त प्रकृति से ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये सब पैदा होते हैं, जिनसे कि हमारा शरीर बनता है। ये प्रश्न श्रीमद् भागवत में है कि मार्कण्डेय ऋषि के बारे में कहा जाता है कि जिस समय प्रलय होती है और पूरी पृथ्वी डूब जाती है प्रलय के समुद्र में, उस समय भी वे जो है उस समुद्र में ही घूमते रहते हैं और वो समुद्र उनकी कमर के बराबर होता है। तो क्या ये सही है? तो इस विषय में इसका उत्तर सूद गोस्वामी देते हैं। सूद गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं और वो बताते हैं कि ये ऐसा नहीं है। मार्कण्डेय ऋषि ने अपने जीवन काल में एक बार भगवान की माया देखी थी, क्योंकि उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि मुझे अपनी आपकी माया देखनी है, तो भगवान ने उनको अपनी माया दिखलाई थी। नारायण ऋषि उनके आश्रम पर आए थे उनको वरदान देने के लिए, तब उन्होंने कहा कि मुझे अपनी माया दिखलाई है। तो माया में जो है मार्कण्डेय ऋषि ने क्या देखा, अचानक उनके आश्रम के पास जो बादल है वो बहुत जो है ना घोर वर्षा करने लगे, एकदम से बदली छा गई, सूर्य ढक गया, अचानक घोर वर्षा शुरू हो गई। और उनके देखते देखते इतना पानी बढ़ा, इतना पानी बढ़ा, ये नदियां बाढ़ आ गई जिस नदी के किनारे वो तपस्या करते थे, और केवल नदी में बाढ़ नहीं आई बल्कि सातों समुद्र एक हो गए, पूरी पृथ्वी डूब गई, सातों समुद्र एक हो गए, इतनी इतना पानी बढ़ा। और समुद्र में भी वो चल रहे हैं तो जल के जीव जंतु लड़ते हैं, कभी कभी उनकी चपेट में आ जाते हैं जीव जंतु लड़ते हैं तो, और बड़ी भयंकर लहरें उठ रही हैं जिसमें वो कष्ट पा रहे हैं। इस तरह से जो है मार्कंडेय जी चलते चलते पानी में चलते चलते उन्हें दूर एक जो है टापू दिखाई दिया पानी के अंदर, पानी के बीच में। उस टापू में एक बरगद का पेड़ लगा हुआ है, बट वृक्ष, और बरगद के पेड़ के कई पत्ते टूट करके पानी में गिरे हैं, और कुछ पत्तों से जो है ना एक दोना जैसा बन गया है पानी में, और दोने में एक लेटा हुआ है बालक, पानी के ऊपर पत्तों का दोना है उसमें एक बालक लेटा हुआ है, और वो जो बालक है अपने दोनों हाथों से दाहिने पैर के अंगूठे को चूस रहा है। तो मार्कंडेय ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक कैसे यहां पर, सब पूरी सृष्टि नष्ट हो गई, ये बालक कैसे यहां पर जिंदा है। तो सोचे कि मैं इस बालक से पूछूं इसके परिचय, ये बालक कौन है। तो इस बालक के पास जाने का प्रयास करते हैं, अचानक श्वास बालक ने खींची और श्वास के रास्ते से ये उसके पेट के अंदर चले गए, इस बालक के। जब उस बालक के पेट के अंदर चले गए तो उन्होंने देखा कि पूरे के पूरा ब्रह्मांड वैसा का वैसा ही है। फिर ब्रह्मांड में अनेक लोकों में वो विचरण करते रहे, फिर अपने आश्रम में आ गए। उन्होंने 1 करोड़ साल तक तपस्या की उस आश्रम में, अपने आश्रम में। और देखो वो पेट के अंदर है, और अचानक थोड़ी देर में बालक की श्वास बाहर निकली, तो श्वास के द्वारा ये बाहर आ गए। तो देखा रे ये तो पानी ही पानी है, तो बड़े चकित हो गए, ये क्या, इसकी पेट, इस बालक की पेट के अंदर में था, करोड़ साल तक मैंने वहां तपस्या करी, और अभी तो कुछ क्षण ही हुए हैं बाहर आ गए। तो कुछ क्षण बीता था और करोड़ साल तक वो बालक के पेट के अंदर है। इसके बाद फिर भगवान की माया बिल्कुल लुप्त हो गई, और उन्होंने देखा कि वो अपने आश्रम पर बैठे हुए हैं, और कोई वर्षा नहीं हुई, ना कोई प्रलय हुई, ना उनको समुद्र का कोई कष्ट प्राप्त हुआ है, है ना। तो श्रीमद् भागवत में इस विषय पर स्पष्ट कथन है कि ये कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्कंडेय मुनि जो है मृकंडू के पुत्र हैं, मृकंडू एक ऋषि थे, उनके पुत्र हैं। और कोई प्रश्न किसी का, और कहा है कि है, शुरू में ही भगवान ने कहा पंडिता, है ना। तो अच्छी प्रकार से बैठा दी भगवान ने बात, और बहुत श्लोक हैं जिसमें ये भगवान बताते हैं किसको जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता है, मारा नहीं जा सकता है, सब कुछ बताया भगवान ने। लेकिन फिर भगवान ये कह रहे हैं कि जो लोग आत्मा को नहीं मानते और वे भी शोक नहीं करते, तो फिर तुम्हें तो और शोक नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास आत्मा का ज्ञान है तो तुम्हारे अंदर तो ज्यादा गुण होने चाहिए ना। भौतिकतावादियों के अंदर एक गुण तो ये है कि वे शोक नहीं करते, चिंता नहीं करते। उनका ये कहना है कि मरने के बाद सब समाप्त हो जाएगा, तो अपना अभी जितना आपको मजा लेना है मजा ले लो, आप समझे ना। उनका यही कहना है कि भाई दोबारा तो जीवन मिलेगा नहीं, इसलिए इस जीवन में जितना भी आपको हंसना है और मजा लेना है मजा ले लो। तो इस तरह से जो है वो लोग भी शोक नहीं करते, चिंता नहीं करते। उनकी शिक्षा यही है कि दिमाग में किसी प्रकार का तनाव ना आए, और हमेशा प्रसन्न रहो, उनका ही कहना है। जबकि वो नहीं मानते आत्मा को, तो जो आत्मा को मानने वाला है उसको तो और अधिक समझदार होना चाहिए, इसमें इसमें फिर शोक क्यों करते। हाँ, और कोई प्रश्न। नहीं, 10वें अध्याय में नहीं, 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं परम भूयः अप्रोक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमत्त्वं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे। नहीं, ये तो 14वें अध्याय का भूय ए महाबाहो चुड़मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। भगवान, फिर से तुम मेरे श्रेष्ठ वचनों को सुनो, फिर से भगवान ये कहते हैं ना, इन चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, ज्ञान में जो उत्तम ज्ञान है उसको परम भूया फिर से मैं बताऊंगा। परम भूया प्रवक्ष्यामि, भूया कहना फिर से, परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, ज्ञान में जो उत्तम ज्ञान है उसको मैं बताऊंगा। यज्ञा कामनया सर्वे पराम सिद्धि में तो गता, इसको जान करके सभी मुनियों ने पराम सिद्धि प्राप्त की है। इनका प्रश्न यह था कि नवे अध्याय में भगवान ने जब कहा है कि सबसे गूढ़ ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो फिर दसवें अध्याय के पहले श्लोक में या चौदह अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने क्यों कहा कि ऐसा ज्ञान जो कि पहले नहीं बताया है तो ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। हाँ, तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, चौदहवें अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हाँ इस प्रकार से जो है जो ज्ञान है वो भगवान ने पिछले अध्याय में नहीं दिया, जिस प्रकार से चौदहवें अध्याय में भगवान समझा रहे हैं। चौदहवें अध्याय में भगवान ने तीन गुणों के बारे में समझाया, तो वो विषय बहुत सरल बना दिया भगवान ने। तीन गुणों के बारे में बता करके भगवान ने विषय को बहुत आसान बना दिया, क्योंकि उसमें भगवान ने बताया है कि तीन गुण किस प्रकार से जीव को बांधते हैं। और उसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति अपनी माया को फिर खोल खोल करके बता दे, कोई जादूगर है जिसके द्वारा वो सबको मूर्ख बनाता है, लेकिन अगर अपना जादू आपको बताए है, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। उसी प्रकार से भगवान ने जिस माया के द्वारा सब जीवों को मोहित किया हुआ है उसकी माया का रहस्य भगवान खोल के बता रहे हैं, इसलिए चौदहवां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है उस दृष्टि से। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति नवे अध्याय के अनुसार भगवान की भक्ति नहीं करता है तब तक वो आगे के अध्याय नहीं समझ सकता। श्री भगवान वाच भूय हे महाबाहो सुन मे परम मचहा कृत्य हम प्रिय माणा वक्ष्यामि हृदय कामया। श्री भगवान ने कहा महाबाहु अर्जुन और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। खैर श्लोक में जो शब्द है भूय मतलब फिर से तुम सुनो मेरा परम वचन, मतलब भगवान के कहने का मतलब कि तुम फिर से मेरा परम वचन सुनो है? और मैं तुम्हें बताऊंगा किस लिए, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मान हो, मेरे प्रिय हो है? तुम्हारे हित के लिए मैं कहूंगा। तो वो जो है वही बात है जो भगवान ने नवे अध्याय बताई। दसवें अध्याय की ग्यारहवें श्लोक तक भगवान ने जो बात बताई है वो नवे अध्याय के सात साथ ही है, सातवां अध्याय आठवां अध्याय नवा अध्याय ये सब जो बातें हैं सातवें से लेकर के और नवे अध्याय तक एक ही बात है। और अभी फिर अर्जुन के प्रश्न होंगे दसवें अध्याय में, तो फिर वो विभूतियों का भगवान वर्णन करेंगे है ना। लेकिन सात आठ नौ दसवें के ग्यारह श्लोक तक एक ही विषय से संबंधित बातें हैं भगवान की।
जय 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 Thank you. राम है।